ख वैदिक राजनीतिक अवस्था। वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में राजनीतिक अवस्था समुन्नत थी। उस समय राजा का निर्वाचन, राजा के कर्तव्यों का निर्धारण, मंत्रिमंडल का गठन, सभा समितियों के कर्तव्यों का निर्देशन, विविध शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, कर निर्धारण, विविध शस्त्रास्त्रों का उल्लेख समुन्नति का परिचायक है। इसकी ही संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। एक, राष्ट्र और देश। वेदों में राष्ट्र और देश शब्दों का प्रयोग मिलता है। एक मंत्र में राष्ट्र शब्द का बहुवचन में प्रयोग मिलता है, जिससे अनेक राष्ट्रों की सत्ता ज्ञात होती है। देशोपसर्गाह के द्वारा देश पर आने वाले संकटों या दैवीय प्रकोप से देश की रक्षा की प्रार्थना की गई है। वैदिक आदर्श। यजुर्वेद में राष्ट्र के विषय में वैदिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। उसमें तीन गुण होने चाहिए। एक, स्वराज स्थः, राष्ट्र स्वतंत्र हो। दो, जनभृत स्थः, वह जनहितकारी हो। तीन, विश्वभृत स्थः, वह विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसा राष्ट्र हमें प्राप्त हो। स्वराज स्थः, जनभृत स्थः, विश्वभृत स्थः, राष्ट्रदा राष्ट्रम मे दत्त, राष्ट्रोन्नति के साधन। अथर्वेद के एक महत्वपूर्ण मंत्र में कहा गया है, राष्ट्र की उन्नति के लिए दो गुण अनिवार्य हैं, एक तप और दो दीक्षा। इन दो गुणों को अपनाने से ही कोई राष्ट्र उन्नत होता है। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्वि दस्तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलम् ओजस्व ओजस्य जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। दो, ग्राम विश और जन। प्राचीन राजनीतिक अवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम प्रधान या ग्राम प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। इसका विधिवत निर्वाचन होता था। ग्रामणी को राजा के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, अतः वह राजकृत कहा गया है। यह एक प्रकार से ग्राम पंचायत का प्रमुख होता था। ग्राम संबंधी सभी भूमि विवाद आदि को निपटाना उसका कार्य होता था। यजुर्वेद में सेनानी ग्रामण्यों में सेनापति के साथ उसका उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि वह सेना के लिए सैनिकों को भी तैयार करता था। अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे। इसके सर्वोच्च अधिकारी को विशपति कहते थे। ऋग्वेद में विशपति को पुरों का पालक और पिता कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि वह नगराध्यक्ष के तुल्य होता है। विशों के समूह को जन कहते थे। जन का सर्वोच्च शासक राजा होता था। जनों का निवास जनपदों में होता था। ऋग्वेद और अथर्वेद में ऐसे 20 जन राज्यों का उल्लेख मिलता है। अनेक जनपदों को मिलाकर राष्ट्र बनता था। तीन, राजा का निर्वाचन। राजा की आवश्यकता के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण में एक रोचक प्रसंग आया है। देवता और असुर निरंतर युद्ध करते थे। असुर देवों को हरा देते थे। देवों ने विचार किया कि राजा न होने के कारण हम पराजित होते हैं, अतः उन्होंने इंद्र को अपना राजा बनाया और वे विजयी हुए। ऋग्वेद और अथर्वेद के कई सूक्तों में प्रजा के द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख है। अथर्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि पांचों दिशाओं से आई हुई ये प्रजाएं तुझे राज्य के लिए निर्वाचित करती हैं। राजा की नियुक्ति का कार्य समिति करती थी। अथर्वेद के एक मंत्र से ज्ञात होता है कि राजा का निर्वाचन सर्वसम्मति से किया जाता था। इसका आधार होता था गुणों और वीरता आदि में सर्वोत्कृष्टता। इंद्र को गुणों में सर्वोत्कृष्ट पाया गया, अतः उसे राजा बनाया गया। अथर्वेद में निर्वाचकों के लिए वरुण शब्द आया है और राजा के लिए कहा है कि वरुणः संविधानः, अर्थात वह निर्वाचकों से संपर्क करता था। राजा ही नियुक्ति जीवन भर के लिए होती थी। अतः मंत्र में दशमीम अर्थात दसवें दशक तक के लिए 100 वर्ष के लिए कहा गया है। चार, राज्याभिषेक। राजा के विधिवत निर्वाचन के बाद उसका राज्याभिषेक होता था। यजुर्वेद के अध्याय 9 और 10 में तथा शतपथ ब्राह्मण के कांड 5 में इसका विस्तृत वर्णन है। राज्याभिषेक के समय राजसूय और वाजपेय यज्ञ किए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि राजसूय यज्ञ का फल है राजत्व की प्राप्ति और वाजपेय यज्ञ का फल है साम्राज्य की प्राप्ति। राजा वै राजसूय नेष्ट्वा भवति सम्रांग वाजपेयेन। शपथ ग्रहण। राज्याभिषेक के समय राजा को यह शपथ लेनी होती थी, मैं सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों के मध्य में मैंने जो भी इष्टापूर्त अथवा पुण्य कर्म किए हों वे सब नष्ट हो जाएं और मैं स्वर्ग समस्त शुभ कर्म आयु और संतान से वंचित हो जाऊं। यदि मैं किसी भी प्रकार से देश और जनता के प्रति द्रोह करूं, इसे ज्ञात होता है कि देशद्रोह और जनता के साथ विश्वासघात राजा के लिए अक्षम्य अपराध है। 5. राजा के कर्तव्य। राज्याभिषेक के साथ ही राजा के कर्तव्यों का भी निर्देश किया गया है। राजा से कहा गया है कि तुझको यह राष्ट्र दिया जा रहा है, तू इसके नियंता हो, तुम दृढ़तापूर्वक इस उत्तरदायित्व को संभालो। यह राष्ट्र तुम्हें इन कार्यों के लिए दिया जा रहा है। 1. कृषि की उन्नति। 2. जन कल्याण। 3. आर्थिक समुन्नति। 4. राष्ट्र की सुदृढ़ता। इयम् तेरांगयन्तासि यमुनो ध्रुवो असि धरुणः कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रयै त्वा पोषाय त्वा। संक्षेप में 4 शब्दों में राजा के पूरे कर्तव्यों का निर्देश है। 1. कृषि। कृषि की उन्नति से अन्न समृद्धि होगी। 2. क्षेम। जन कल्याण और प्रजा का रंजन राजा को स्थिरता प्रदान करेगा। 3. रई। आर्थिक समुन्नति से ही देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4. पोष। देश की सुदृढ़ता से राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा। ये ही भाव अन्य मंत्रों में भी दिए गए हैं। अथर्वेद का कथन है कि राष्ट्र को सुदृढ़ बनाओ और सौभाग्य की ओर ले जाओ। राष्ट्र की दृढ़ता से ही आर्थिक अभ्युदय होगा। ऋग्वेद के एक मंत्र में कठोर अनुशासन की शिक्षा दी गई है। राजा उग्र निदेशक हो। यजुर्वेद में उत्तम शिक्षा दी गई है। उग्रवादी को कठोर दंड दे, दुर्जनों से कठोर व्यवहार करे और मित्रों को प्रेम से वश में करे। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करे और उन्हें निर्भय करे। राजा और प्रजा अन्योन्य संबद्ध है, अतः राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की सुरक्षा करे और प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा को अपना पूर्ण समर्थन दे, व्यापार और शिक्षा को संरक्षण दे, व्यापारियों और विद्वानों की रक्षा करे, कठोरता से कर वसूल करे जिससे अर्थव्यवस्था ठीक रहे। 6. राजा और राजकृत रत्निन। वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में राजा के निर्वाचक या राजकार्य में सहायकों को राजकृत कहा गया है। ये राजा के निर्वाचन में भाग लेते थे। शतपथ ब्राह्मण में इनकी संख्या 11 बताते हुए एकादश रत्नानि कहा गया है। ये रत्न या राजकीय सम्मान सूचक पदक आदि धारण करने के कारण इन्हें रत्निन रत्नधारी कहा गया है। इनका क्रम यह रखा गया है। 1. सेनानी। 2. पुरोहित। 3. महीषी। 4. सूत। 5. ग्रामणी। 6. छत्ता। 7. संग्रहिता। 8. भाग दूध अथवा राजस्व अधिकारी। 9. अक्षावाप आय व्यय निरीक्षक। 10. गोविकर्त अरण्यपाल। 11. पालागल अथवा विशिष्ट संदेशवाहक। 7. विविध शासन प्रणालियां। ऐतरेय ब्राह्मण की अष्टम पंचिका में विविध शासन प्रणालियों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, साथ ही इनके शासकों के नाम भी दिए गए हैं। यह भी उल्लेख है कि ये प्रणालियां कहाँ प्रचलित थी। ये प्रणालियां हैं: 1. साम्राज्य। इस प्रणाली के शासक को सम्राट कहते थे। यह प्रणाली पूर्व दिशा के राज्यों में प्रचलित थी। सम्राट एक छत्र अधिकारी होता था। 2. भोज्य। इस प्रणाली के शासक को भोज कहते थे। यह प्रणाली दक्षिण दिशा के सत्वत अथवा यादव राज्यों में प्रचलित थी। अंधक और बिश्री यादव गणराज्य इस श्रेणी में आते हैं। इस शासन प्रणाली में जनहित और लोक कल्याण की भावना अधिक रहती थी, अतः यह पद्धति अधिक लोकप्रिय हुई। 3. स्वराज्य। इस प्रणाली के शासक 2 स्वराट कहते थे। यह प्रणाली पश्चिम दिशा के सुराष्ट्र, कच्छ, सौबीर आदि राज्यों में प्रचलित थी। यह स्वराज्य या स्वशासित प्रणाली है। राजा स्वतंत्र रूप से शासन करता है। 4. वैराज्य। इस प्रणाली के शासक को विराट कहते थे। यह प्रणाली हिमालय के उत्तरी भाग, उत्तर कुरु, उत्तर मद्र आदि राज्यों में प्रचलित थी। यह शासन प्रणाली जनतंत्रात्मक या संघ शासन प्रणाली है। इसमें प्रशासन का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर न होकर समूह पर होता है। 5. पारमेष्ठ। इस प्रणाली के शासक को परमेष्ठ कहते थे। महाभारत शांति पर्व और सभा पर्व में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। यह गणतंत्र पद्धति है। इसकी मुख्य विशेषता है प्रजा में शांति व्यवस्था की स्थापना। इसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। गणमुखी योग्यता और गुणों के आधार पर होता है। 6. राज्य। इस प्रणाली में राज्य का उच्चतम शासक राजा होता था। यह प्रणाली मध्य देश में कुरु, पांचाल, उशीनर आदि राज्यों में प्रचलित थी। राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की परिषद होती थी। शासन तंत्र के संचालन के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। सात, महाराज्य। इस प्रणाली के प्रशासक को महाराज कहते थे। यह राज्य पद्धति का उच्चतर रूप है। किसी प्रबल शत्रु पर विजय प्राप्त करने पर उसे महाराज उपाधि दी जाती थी। आठ, आधिपत्य। इस प्रणाली से प्रशासक को अधिपति कहते थे। इस प्रणाली को समंत पर्यायी कहा गया है। वह पड़ोसी जनपदों को अपने वश में कर लेता था तथा उनसे कर वसूल करता था। छांदोग्य उपनिषद में इस प्रणाली को श्रेष्ठ बताया है। एक, सार्वभौम। इस प्रणाली के प्रशासक की एक राट कहते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। यह सारी भूमि का राजा होता था। इस प्रणाली को सार्वभौम प्रभुत्व नाम दिया गया है। वेदों में वर्णित अन्य शासन प्रणालियां। दस, जनराज्य या जानराज्य। यजुर्वेद, तैत्तरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण आदि में महते जानराज्य महान जनराज्य का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि राजा का अभिषेक जनतंत्रात्मक प्रशासन के लिए होता था। इसके प्रशासक को जनराजा कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा सुदास के साथ 10 जनराज्यों के युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में इंद्र ने राजा सुदास को विजय दिलाई। इस युद्ध को दशराज्य युद्ध कहा जाता है। 11, अधिराज। ऋग्वेद और अथर्वेद में इसका उल्लेख है। इसके प्रशासक को अधिराज कहते थे। इस प्रणाली में उग्रम चेतारम अर्थात राजा उग्र और कठोर अनुशासन रखता था। राजा निरंकुशता का रूप ले लेता होगा, अतः यह प्रणाली आगे लुप्त हो गई। 12, विप्र राज। ऋग्वेद और अथर्वेद में विप्र राज का वर्णन है। इसमें यज्ञ कर्मकांड पर विशेष बल था। संभवतः एकांगी विचारधारा और पाखंड के विस्तार के कारण यह प्रणाली आगे नहीं चली। 13, समर्य राज। ऋग्वेद में समर्य राज का उल्लेख है। समर्य का अर्थ है सम, श्रेष्ठ या संपन्न। अर्य, वैश्य। यह धनाढ़ियों का राज्य था। इसमें व्यापार में उन्नति, धन धान्य की समृद्धि और सैन्य शक्ति की वृद्धि का उल्लेख है। संभवतः प्रजा शोषण के कारण यह पद्धति लोकप्रिय नहीं हुई और लुप्त हो गई।